परिशिष्ट दो वैदिक स्वर प्रक्रिया। वेदों की भाषा को संगीतात्मक कहा जाता है। वेद मंत्रों का पाठ विशेष स्वरों द्वारा तथा विशेष अक्षरों पर बल देकर किया जाता है। किसी शब्द के किसी अक्षर को स्वर में पढ़ा जाता है, इससे उस शब्द के अर्थ का निर्णय होता है। यदि किसी शब्द के अक्षर के स्वर को बदल दिया जाए तो उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए इंद्र शत्रु शब्द है, इसमें दो पद हैं इंद्र और शत्रु। यदि आदिपद को उदात्त समझा जावे तो इसका विग्रह बहुव्रीही समास में इंद्र शत्रु यस्य सः, अर्थात इंद्र उसको मारने वाला होगा। यदि अंतिम पद को उदात्त माना जाए तो इसका विग्रह तत्पुरुष समास में इंद्रस्य शत्रु होगा, अर्थात इंद्र को मारने वाला होगा। इस प्रकार के स्वर के परिवर्तन के अर्थ विपरीत हो जाते हैं। वैदिक भाषा की स्वरगत या विशेषता प्राचीन ग्रीक लैटिन आदि भाषाओं में भी रही थी। जर्मन आदि भाषाओं में अभी यह विशेषता मिलती है। ग्रीक शब्द में यदि अंतिम स्वर पर बल दिया जावे तो इसका अर्थ पत्थर फेंकने वाला होगा तथा आदि के स्वर पर बल दिया जाने पर पत्थरों से आहत अर्थ होगा। जर्मन भाषा में यूरिक हेन शब्द के अंतिम स्वर पर स्वराघात होने पर इसका अर्थ उपेक्षा करना होगा एवं पहले स्वर पर स्वराघात होने पर इसका अर्थ पार करना या ऊपर से जाना होगा। अंग्रेजी भाषा के कंडक्ट शब्द को ले यह संज्ञावाची और क्रियावाची दोनों में है। यदि कौन पर बल देंगे तो संज्ञावाची होगा, प्रोडक्ट पर बल देंगे तो क्रियावाची शब्द होगा। स्वर की यह प्रक्रिया प्रायः सभी भाषाओं में कुछ न कुछ अवश्य मिलती है। वेदों के अर्थों को समझने के लिए स्वरों का ज्ञान अवश्य आवश्यक है। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद के दूसरे अनुवाक में लिखा है, वर्णः स्वरो मात्रावलम् इत्येतज्ज्ञासितम्, अर्थात वेदों के अर्थों को समझने के लिए वर्ण स्वर मात्रा बल इन सबको जानना चाहिए। पाणिनि ने अपनी पाणिनीय शिक्षा में एवं अष्टाध्यायी में स्वरों के संबंध में विस्तृत विवेचन किया है तथा स्वरों से संबंधित नियमों को बताया है। स्वर तीन होते हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। इनके उच्चारण के संबंध में पाणिनि ने बताया है, उच्चैन उदात्त नीचैन उदात्त समाहार स्वरित, अर्थात जिस स्वर पर बल देकर ऊंचा उच्चारण किया जाता है वह उदात्त होता है, हल्के से उच्चारण किया जाने वाला स्वर अनुदात्त होता है और दोनों से मिश्रित स्वर स्वरित है। वेदों में प्रत्येक स्वर निश्चित ही उदात्त अनुदात्त या स्वरित होगा एवं यह उच्चारण उसके अर्थ का निश्चय करेगा। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। माँ शब्द के दो अर्थ हैं, मुझको और निषेध करना। माँ यदि अनुदात्त हो तो इसका अर्थ सर्वनामवाचक मुझको होगा, यदि उदात्त हो तो इसका अर्थ निषेधात्मक होगा। क्षयम गतः देवदत्तः, वाक्य में क्षय शब्द के दो अर्थ हैं, घर और मृत। यदि क्षय शब्द को आद्युदात्त माने तो इसका अर्थ घर होगा तथा अंतोदात्त मानने पर मृत होगा। अर्थ शब्द के स्वामी और वैश्य दो अर्थ हैं, इसको आद्युदात्त मानने पर वैश्य तथा अंतोदात्त मानने पर स्वामी अर्थ होगा। सुपुरुष को अंतोदात्त मानने पर इसका दुष्ट पुरुष एवं आद्युदात्त मानने पर सज्जन होगा। स्वरों के सामान्य नियम। व्याकरण ग्रंथों में स्वरों के संबंध में विस्तृत नियम दिए गए हैं। कुछ विशेष नियम इस प्रकार हैं। एक, वैदिक भाषा में एक पद में प्रायः एक ही पद उदात्त होता है और शेष अनुदात्त होते हैं। प्रतिपदिकों और धातुओं का प्रायः अंतिम पद उदात्त होता है। दो, निपातों आदि को छोड़कर अन्य उपसर्गों और प्रत्ययों का आदि स्वर उदात्त होता है। तीन, लुंग लंग लकारों में धातु से पहले आने वाले अ और आ उदात्त होते हैं। चार, चित कोष्ठक जिसमें च का लोप हुआ हो कोष्ठक बंद, तित तद्धित प्रत्यय जिनमें त का लोप हुआ हो समस्त पद अंतोदात्त होते हैं। पांच, देवतावाचक शब्दों में एक स्वर उदात्त होता है पर द्वंद्व समास होने पर यथा मित्रा वरुणा में दो उदात्त होते हैं। द्वंद्व समास को छोड़कर देवतावाचक शब्द के समास में एक पद में एक ही स्वर उदात्त या स्वरित होगा, शेष अनुदात्त होंगे। छ, च आदि अव्ययों के सभी स्वर अनुदात्त होते हैं। सात, संबोधन के पदों में प्रायः उदात्त नहीं होता, सर्वनाम शब्दों का वैकल्पिक रूपों में आदि में उदात्त नहीं होता। आठ, तित जिसके त का लोप हुआ हो स्वरित होता है। यदि क्रियापद आदि में न हो तो उनके सभी स्वर अनुदात्त होते हैं। दस, पुनः आवृत्त किए जाने पर दूसरा पद अनुदात्त होगा। संधियां होने पर स्वर की स्थिति। एक, उदात्त और अनुदात्त की संधि होने पर उदात्त होगा। दो अनुदात्त और उदात्त की संधि होने पर उदात्त होगा। तीन स्वरित और उदात्त की संधि होने पर उदात्त होगा, उदात्त और अनुदात्त की संधि होने पर स्वरित होगा। उदात्त और स्वरित की संधि नहीं होती, अनुदात्त और अनुदात्त की संधि होने पर अनुदात्त होता है, परंतु दीर्घ संधि होने पर स्वरित होता है। स्वरित और अनुदात्त की संधि से स्वरित होता है। स्वरों में परिवर्तन के सामान्य नियम। एक उदात्त से परवर्ती अनुदात्त को स्वरित होता है, किंतु उस अनुदात्त के बाद कोई स्वरित या उदात्त नहीं होना चाहिए, ऐसा होने पर यह अनुदात्त ही रहता है। दो उदात्त में व्यवहित पूर्ववर्ती अनुदात्त ही रहता है। तीन सामान्यतः एक पद में एक ही स्वर उदात्त रहता है। स्वरांकन की विधि। स्वरांकन भारतीय पद्धति से निम्न प्रकार से किया जा सकता है। एक उदात्त कोई चिन्ह नहीं, दो अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी रेखा, तीन स्वरित अक्षर के ऊपर खड़ी रेखा। कुछ विदेशी विद्वान स्वरांकन इस प्रकार से करते हैं। एक उदात्त ऊपर चिन्ह, दो अनुदात्त को चिन्ह नहीं, स्वरित नीचे रेखा। परिशिष्ट तीन ऋग्वेद के छंद। ऋग्वेद छंदोबद्ध रचना है। यास्क ने छंद शब्द की निष्पत्ति छत धातु से बताई है, जिसका अर्थ है आवृत करना, अर्थात छंद वेदों के आवरण है। शब्दों को विशिष्ट आवरण से में बांधे रखने वाले छंद होते हैं। मंत्रों का पाठ और अर्थों का ज्ञान छंदों के बिना नहीं होता। वेद मंत्रों को पढ़ते हुए ऋषि देवता और छंदों को जानना आवश्यक है। बृहत देवता में लिखा है अविदित्वा ऋषि छंदो देवतम योगमेव च योध्यापयज्येपे द्वापि पापीयान जायते तु सह, अर्थात जो ऋषि छंद और देवता को एवं इनके विनियोग को जाने बिना वेद मंत्रों का अध्ययन करता है या जप करता है वह पापी होता है। कात्यायन ने भी सर्वानुक्रमणी में यही बात कही है। यो ह अविदिताशेय छंदो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रे व याजयति वा अध्यायति वा स्थाणु वर्षति गर्ते वा पात्यये प्रमीयते वा पापीयान भवति, अर्थात छंद ऋषि द्वारा देवता को जाने बिना मंत्रों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, अध्यापन करना, इनसे प्रत्येक कार्य निष्फल होता है और व्यक्ति पापी होता है। छंदों के प्रथम आचार्य पिंगल माने जाते हैं। ये पाणिनि के छोटे भाई थे। इन्होंने छंद सूत्र की रचना की थी। इसमें इन्होंने लौकिक और वैदिक शब्द वैदिक सभी छंदों का विवेचन किया था। छंद सूत्र में 8 अध्याय हैं। इनमें प्रारंभ से लेकर 4 अध्याय के 7 सूत्र तक वैदिक छंदों के लक्षण दिए गए हैं। पिंगल से पहले छंद शास्त्र के आचार्य हुए थे, परंतु इनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहीं कहीं संकेत मात्र अवश्य उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में मुख्य रूप से 7 छंदों का प्रयोग किया गया है। इनको 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 3 पादों वाले छंद गायत्री और उष्णिक, 4 पादों वाले छंद अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप और जगती, 5 पादों वाले छंद पंक्ति। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक छंदों में मात्राओं के अनुसार और वर्णिक छंदों में वर्णों के अनुसार गणना की जाती है। वेदों में वार्णिक छंदों का ही अधिक प्रयोग हुआ है। ऊपर कहे 7 छंदों के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। 1 गायत्री, इसमें 3 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद के 8 वर्ण होते हैं। उष्णिक, इसमें भी 3 पाद होते हैं और पहले दूसरे पाद में 8 तथा तीसरे पाद में 12 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप, यह 4 पादों का छंद है, प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। इस छंद का प्रयोग वैदिक साहित्य के अतिरिक्त लोक में भी प्रचुर हुआ है। 4 त्रिष्टुप, यह भी 4 पादों का छंद है, इसके प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। ऋग्वेद में इस छंद का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। बृहति, इस छंद में भी 4 पाद होते हैं, इसके पहले दूसरे और तीसरे पाद में 8 वर्ण और चौथे पाद में 12 वर्ण होते हैं। 6 जगती, जगती छंद भी 4 पादों वाला होता है, इसके प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। पंक्ति, यह 5 पादों का छंद है, इसके प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। इन छंदों को निम्न प्रकार से तालिका में दिखलाया जा सकता है। छंद का नाम, वर्णों की संख्या। संख्या प्रथम पाद, द्वितीय, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद एवं पंचम पाद। योग, 1 गायत्री 8 8 8 = 24, 2 उष्णिक 8 8 12 = 28, 3 अनुष्टुप 8 8 8 8 = 32, त्रिष्टुप 11 11 11 = 44, बृहति 8 8 आठ बारह छत्तीस, बारह 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 अड़तालीस, आठ 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 चालीस। सामान्यतः इन सात छंदों में उपर्युक्त तालिका के अनुसार वर्णों की संख्या निश्चित रहती है, परंतु ये वर्ण कम या अधिक भी हो सकते हैं। इससे उस छंद के अवांतर भेद हो जाते हैं। यदि छंद में एक वर्ण कम हो तो उसे निश्चरित कहते हैं और दो वर्ण कम होने पर विराट कहते हैं। इसी प्रकार एक वर्ण अधिक होने पर उस छंद को भूरिक तथा दो वर्ण अधिक होने पर स्वराट कहते हैं। उदाहरण के लिए गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। यदि इसमें एक वर्ण कम हो अर्थात 23 वर्ण हो तो यह निश्चरित गायत्री होगा। दो वर्ण कम होने पर अर्थात 22 वर्ण होने पर यह विराट गायत्री होगा। गायत्री छंद में एक वर्ण अधिक होने पर 25 वर्ण होने पर यह छंद भूरि गायत्री कहलाएगा तथा दो वर्ण अधिक होने पर अर्थात 26 वर्ण होने पर स्वराट गायत्री कहलाएगा। कई बार किसी मंत्र में निर्धारित संख्या से एक वर्ण कम होता है तब उसको नियम में बांधने के लिए एक वर्ण को दो वर्ण में विभाजित कर दिया जाता है। वह प्रधानतः निम्न प्रकार से किया जाता है। क, संधि युक्त पदों को पृथक करके उच्चारण करना, यथा नोव को नो अव अथवा ब्रह्मा वदतो को ब्रह्म अवदतो या आद्याद्या को अद्य अद्या उच्चारण करना। ख, ए ओ ऐ और औ को दो स्वरों में पृथक करना, यथा ज्येष्ठ को ज्यैष्ठ पढ़ना। ग, संयुक्त य और व से पहले ई और ऊ लगा देना, जैसे सौम्यम को सोमियम, वरेण्यम को वरेण्यम तथा स्वह को सुवह पाठ करना। घ, संयुक्त रेफ से पहले स्वर लगाना, यथा इंद्र को इंदर पढ़ना। कात्यायन की सर्वानुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद में इन छंदों का प्रयोग निम्न संख्या में किया गया है। क्रम संख्या एक छंद नाम गायत्री मंत्रों की संख्या 2477, दो उष्णिक 341, तीन अनुष्टुप 855, चार त्रिष्टुप 4253, पांच बृहति 181, छह जगती 1358, सात पंक्ति 312 इति सिद्धम्।